Muito bem, cara.
Thank you. You're not ender perfect.
अर्जुन भगवान से बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा। दोनों ही जब युद्ध क्षेत्र में आए थे तो अर्जुन बहुत उत्साही था और जब आके वहाँ खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि अब जो है मैं क्या देख रहा हूँ और दूसरे क्या देख रहे हैं, इनको आप रहने दीजिए, मेरे रथ को आप बीच में खड़ा कीजिए और मैं ये देखना चाहता हूं मेरे से युद्ध करने वाले कौन कौन लोग आए हुए हैं, कौन कौन महारथी हैं, ये सब देखना चाहते हैं। और इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास में गया और उसने कहा आपको पता है उस तरफ का युद्ध रचना किसने की है, किसने भी बनाया है, तो बोले आपके ही छात्र ने बनाया है, देखो आपने किसको पढ़ाया वो आपके अपोजिट में भी खड़ा है। फिर उसके बाद में भीष्म पितामह ने देखा कि ये दुर्योधन तो बहुत डरा हुआ है और अगर इसको अभी हम नहीं चेक करेंगे तो ये अभी जो है गिर पड़ेगा, ये सोचकर भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख बजा दिया। शंख बजाने का मतलब युद्ध हमारी तरफ से घोषणा हो गई। आप देखोगे जब भी आप सामाजिक क्षेत्र में जाओगे ना तो जो लोग अन्याय करते हैं ना उनकी तरफ से उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा जोर होती है और जो न्याय करने वाले होते हैं वो मीमी मीमी करते रहते हैं और जो बहुत ज्यादा अन्याय काम करने वाले होते हैं उनका गला थोड़ा जोर होता है। तो ऐसा ही यहां भी हुआ, तो पहले युद्ध की घोषणा भीष्म पितामह ने कर दी। उसके बाद किसने शंख बजाया पांडवों की तरफ से, सबसे पहले भगवान ने बजाया, पांडवों ने बाद में बजाया, अर्जुन ने बाद में बजाया, सबसे पहले भगवान ने शंख बजाया। और कहते हैं कि ये जो कौरवों ने जो भीष्म पितामह का जो शंख बजाया और उसके साथ में कौरव पक्ष वाले लोगों ने जिन्होंने अपने अपने ड्रम बजाए, तो इनसे बोलते हैं घोर एक शब्द हुआ, बस इतना ही कहा, तुमुल शब्द हुआ। और जब भगवान की तरफ से या पांडव की तरफ से जब वो शंख बजा तो बोलते हैं आकाश फट गया, इतनी जोर से इतनी आवाज हुई। इसके पश्चात अर्जुन कहता है कि हमारे रथ को आप बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं। और उस देखने के बदले वो, उसको पता था कि हम किससे लड़ाई करने आ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसको पहली बार उसको आंख में पट्टी बांध के ले आए कि चलो तुमको युद्ध करना है, ऐसा नहीं था। उसको पता था, ये तैयारी कहते हैं 12 साल से तैयारी हो रही थी युद्ध की। तो अर्जुन को ये अच्छी तरह से पता था कि हम युद्ध कर रहे हैं किसके साथ में, सभी हमारे संबंधी हैं, हमारे कजन्स हैं, हमारे भाई हैं, चाचा हैं, ससुर हैं, सब रिलेटिव्स हैं, सब नॉन फिगर, जान पहचान वाले सब हैं। तो जब वो देखता है तो वो क्या देखता है, तो उसने कहा तत्र अवस्थितान पार्थ पितृणत पिता महान आचार्य मातुला मामा चाचा आचार्य, ये सब देख रहा वहां पर। उसको क्या देखना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था कि ये सारे हमारे शत्रु हैं। और भगवान ने चालाकी की, भगवान ने क्या चालाकी की, रथ जाके खड़ा कर दिया दो आदमियों के सामने, एक है भीष्म पितामह और दूसरे द्रोणाचार्य। इन दो को देख के बस उसके मन में कुछ हुआ और उसके बाद में वो आस्ते 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 शिथिल होता गया। वो ये सोचने लगा कि ये कौरव पक्ष में मेरे शत्रु की तरफ में भीष्म पितामह खड़े हैं, इनकी गोदी में मैं खेला हुआ हूं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने धनुर्विद्या सीखी है, और ये सब अधर्म की तरफ खड़े हैं, तो ये अधर्म कैसे जाएगा, केवल उनके पक्ष में जाके वहां झंडा गाड़ देने से तो धर्म नहीं बन जाएगा। अधर्म अधर्म जो है लोगों के हृदय में रहता है, तो ये सब के सब मारे जाएंगे, तब जो है धर्म की स्थापना होगी। अब अर्जुन सोचता है कि हमको अपने भीष्म पिता को भी मारना पड़ेगा, द्रोणाचार्य को भी मारना पड़ेगा, प्लस उसको ये भी पता था कि द्रोणाचार्य हमारी जो है कमजोरी भी जानते हैं। हर शिक्षक अपने शिष्य की कमी जानता है कि इसके अंदर कहाँ कमी है, कहाँ इसका वीक पॉइंट है, तो मैं अपने गुरु के सामने कैसे लड़ पाऊंगा, वो उनको तो मेरी कमी सब मालूम है। तो अर्जुन जो है भीतर ही भीतर डर भी रहा था, प्लस और इन लोगों को अब अपने नाते संबंधियों मित्रों को देख के अब उसकी मन के अंदर जो है उसका कुछ ऐसा इमोशंस आया कि वो है जो श्रेष्ठ धनुर्धर था, इतना फिजिकली स्ट्रांग था, मगर एक इमोशन ने उसको रुला दिया, उसके हाथ पांव शिथिल कर दिए। आप लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा होगा कि हमारे पास में 5 कोश हैं, अगर आपको याद हो तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और हमने ये भी पढ़ा है कि एक से एक सूक्ष्म होते जाते हैं, अन्नमय स्थूल है, उससे सूक्ष्म प्राणमय है, उससे सूक्ष्म मनोमय है, उससे सूक्ष्म विज्ञानमय है, उससे सूक्ष्म आनंदमय कोश है। और जो सूक्ष्म होता है वो बाकी सबको कंट्रोल करता है। अब मनोमय क्या है, किसको कंट्रोल करता है, प्राण को कंट्रोल करता है, स्थूल शरीर को कंट्रोल करता है। तो एक इमोशन अगर आ जाए ना तो आपका जो है हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, केवल एक इमोशन आ जाए, इतना स्ट्रांग होता है इमोशन। तो अर्जुन भी उससे बच नहीं सका, अर्जुन के भी चक्के छूट गए। कैसे चक्के छूट गए, तो बोलता है कि भाई मेरे जो है सीधंति मम गात्रानि मुखम च परिशुष्यति, मेरा जो है अब शरीर कांप रहा है, एक इमोशन कांप रहा है, मुंह सूख रहा है और रोम हर्ष हो रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है। अब वो कहता है न सक्तुम अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना, और मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, भ्रमतीव मना मेरा मन जो है घूम रहा है, माइंड इज सर्कलिंग। अच्छा, और निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, बोले निमित्त जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं वो भी विपरीत नजर आते हैं, हमको लगता है कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, कुछ गड़बड़ है इसमें, इसलिए ना कांचते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च, मेरे को विजय नहीं चाहिए, मेरे को राज्य भी नहीं चाहिए और मेरे को सुख भी नहीं चाहिए। देखो ये तीन चीजों के लिए आदमी एक्ट करता है, काम जो करता है ना, इन तीन चीजें उसके पीछे होती हैं, विजय चाहिए, मेरे को राज्य चाहिए, धन चाहिए, मेरे को सुख चाहिए। हमारे जितने भी कर्म होते हैं ना, सबके पीछे एक सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, बस हर कर्म के पीछे सुख की भावना रहती है। अब वो कहता है हमको विजय भी नहीं चाहिए और हमें सुख भी नहीं चाहिए, हमको राज्य भी नहीं चाहिए और हम करेंगे भी क्या। ये सामर्थ कांचती नो राज्यम भोगा सुखानी च, जिनके लिए हमको राज्य चाहिए था, सुख चाहिए था, जिनके ऊपर हम राज करते, वो सारे के सारे सामने यहां खड़े हुए हैं। अगर हम जीत भी जाएंगे तो प्रजा कहां मिलेगी, प्रजा तो यहां खड़ी हुई है सारी, तो किसके लिए हम राज्य कर रहे हैं। और अगर जीत भी गए तो ये राज्य का भोग जो है ना, वो लगेगा कि लड्डू जो हैं खून के अंदर बंधे हुए हैं, खून से सने हुए हैं, इतने लोगों को मारने के बाद में हमको राज्य मिला, तो राज्य फिर हम कैसे भोग करेंगे। एतान हंतुम इच्छामी ज्ञोतुमी मधुसूदन अपि त्रैलोक के राजस्य है तो किम न मही कृते, बोले मेरे को कोई अगर तीन लोकों का भी राज्य दे दे तब भी मैं मरने वाला नहीं हूं, और आप तो केवल इंद्रप्रस्थ की भूमि, छोटी सी भूमि के लिए एक दिल्ली आपको दे देंगे, उसके लिए मैं इनको मारने ना जाने वाला हूं, नहीं मैं नहीं मारूंगा इनको। निहत सिद्धार्थ राष्ट्र ना का प्रीति साधना पाप मेवा श्रेयद आसमान एतान आतताई ना, देखो वो अपन को कहता है कि आतताई हैं, और हम लोगों ने देखा भी आतताई किसको कहते हैं, और मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है कि आतताई को मार देना चाहिए, जो आतताई होता है उसको मार देना चाहिए। कौन आतताई होता है आपको याद है, जो आपके घर की स्त्री को उठा के ले जाए, जो आपका धन छीन ले, जो आपको शस्त्र से मारे, जो आपकी जमीन ले ले, इन सबको जो है आतताई कहा गया है। और इन लोगों के लिए क्या कहा गया है कि इनको मार देना चाहिए, मगर ये कहता है कि इन आतताइयों को मारने से कृष्ण हमको और आपको दोनों को पाप लगेगा, भगवान को कह रहा पाप लग जाएगा। अच्छा स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनो श्याम माधव है, ओ माधव कभी अपने लोगों को मार के कभी कोई सुखी हुआ है। अच्छा फिर क्या कहता है, यद्यपि एते न पसंति लोभ अपत चेतस कुलच्छ कृतम दोषम मित्र दोह च पातकम, चलो ये लोग तो उनको मालूम नहीं है, ये लोग लोभ के कारण आए हुए हैं, सब जितने भी कौरव पक्ष के लोग खड़े हुए हैं वो इस वास्ते आए हैं कि अगर हम जीत गए तो कोई सोचता है हमको मिनिस्टर का पद मिल जाएगा, कोई कहता है हमको इतनी जमींदारी मिल जाएगी, कोई अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, ये सोच के सब उस तरफ लोग आए हुए हैं। लोभ उपहित चेतसा, इनके पीछे में लोभ है। कथम न गे अस्माभि पापात अस्मिन् वर्तितम कुलच्छय कृतम दोषम प्रपश्यत् जनार्दन, अच्छा उनको तो नहीं मालूम है, हम लोगों को तो पता है, हम तो विचार कर रहे हैं कि ये लोग पाप लोभ के कारण जो है ये लोग आए हुए हैं, मगर हमारे हम तो बुद्धि रखते हैं, हम लोग सोचें, करने दो उनको जो करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को तो विचार करना चाहिए कि अगर हम करेंगे लड़ाई करेंगे युद्ध करेंगे तो क्या होगा। बोलते हैं कुल धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, कुल छह कृतम, एक तो फैमिली खराब हो जाएंगी, इतने लोग मारे जाएंगे, इतनी विधवाएं हो जाएंगी, फैमिली खराब हो जाएंगी, उसके बाद कुल छह प्रसन्ति कुल धर्म, अगर फैमिली नष्ट हो गई तो कुल के धर्म भी गए। कुल के धर्म क्या है, सबके अपने अपने धर्म है, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। जब आप लोग शादी होती है ना बच्चों की, दूसरी फैमिली के जब आप लोग बैठते हैं तो आप लोग बोलेंगे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, वो बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो आप अपनी उनकी रीति फॉलो करते हैं, वो आपकी रीति फॉलो करते हैं, ऐसे चलता है। फिर हम लोगों ने आपको ये भी बताया था कि नॉर्थ इंडिया में सबके चने बनाने की रेसिपी अलग है हर फैमिली की, साउथ में सांबर बनाने की रेसिपी हर फैमिली की अलग अलग है। तो ये जो कुल धर्म जो है, रीति जो चली आ रही है, वो अगर जब टूट गई, फैमिली टूट गई, तो वो रीति भी गई, वो रेसिपी गई, आगे नहीं चलेगा फिर। अच्छा कुल धर्म तो जाएगा, फिर बोलते जाति धर्म भी जाता है, जाति धर्म क्या है, बोले अब स्त्रियां हो गई विधवा हो गई, विधवा होने के बाद में अब उन बेचारों को कौन प्रोटेक्शन करे, कुछ जो है दूसरी जाति के ले जाते हैं, कुछ क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता रहता है। तो उसे बोलते हैं कि जाति चली जाती है। और जो कुमारी बच्चियां हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए जो है सूटेबल मैच नहीं मिलते। ब्राह्मण है तो उसके लिए ब्राह्मण लड़का नहीं मिलेगा, क्षत्रिय है तो उसके लिए क्षत्रिय लड़का नहीं मिलेगा, तो मिसमैच बहुत होता है। बोलते जाति धर्म भी चले जाती हैं। अब जैसे आपको वहां इंडिया में तो ऐसा मिलता है ना कि जो गोल्ड स्मिथ फैमिली है वो गोल्ड स्मिथ, उनके बच्चे गोल्ड स्मिथ होते जा रहे हैं, आगे आगे चलता है। जैसे हैं सोने वाला, ये वाला, दुनिया भर के जो बिजनेसमैन हैं उनकी बिजनेस कम्युनिटी चलती रहती है, इंडस्ट्री वाले एक के बाद एक उनके बच्चे इंडस्ट्री करते रहते हैं। तो बोले वो जाति धर्म भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इनके नष्ट होने से, जाति धर्म कुल धर्म नष्ट होने से क्या बोलते, अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म बढ़ने से क्या होगा, बोले वो स्त्रियां जो विधवा थी वो जो है नष्ट हो जाएंगी, प्रदूषित कुल स्त्रियां, बोले कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। फिर स्त्री सुदुष्टा सुवर्षने जायते वर्ण संकर, फिर जो है वर्ण संकर शुरू हो जाएगा। वर्ण संकर क्या है, आपको सुटेबल मैच नहीं मिलेगा, वर्ण संकर हो जाएगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण में नहीं होगा। अच्छा, ब्राह्मण का ब्राह्मण में नहीं होगा ऐसा मतलब क्या है, उसके अंदर देखो आपका मेंटल जो है वो मिलता नहीं है। अब जैसे अब एक बहुत एजुकेटेड लड़का हो उसको हम कहेंगे ब्राह्मण है, अब उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो जाए जो दूसरे वैश्य प्रकृति का है, जहां पर केवल बिजनेस होता है, तो वहां प्रकृति मिलती नहीं, पूरी मैच नहीं पूरा होता है। उनका क्या है, उनको खाली पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए जो कुछ करना करते रहेंगे। और ये शिक्षा वाले हैं, हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो मैच नहीं होता है। तो वर्ण संकर बोलते हैं हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती। हमने ऐसा सुना है सुश्रुम, ऐसा हमने सुना है कि अगर ऐसा वर्ण संकर जाति और ये कुल धर्म जब अगर नष्ट हो जाए तो वो सब नरक में चले जाते हैं। नेचुरली अधर्म बढ़ गया तो आपको क्या मिलेगा, आपको पुण्य तो नहीं मिलेगा, पाप ही मिलेगा, तो नरक में जाना पड़ जाता है। अहो बत महत पापम करतुम व्यवसरा वयम, हम लोग जो है बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। वयम, अहम नहीं कहा, फिर अर्जुन कहता वयम, किसको कह रहा है, भगवान को कह रहा है कि वयम मतलब हम दोनों बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्दता, केवल राज्य और सुख के लिए हम लोग अपने संबंधियों को मारने को तैयार हैं, कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। फिर कहता है कि अगर मुझको अगर बिना शस्त्र उठाए अगर कोई मार दे तब भी अच्छा है, लड़ाई नहीं होगी, इसलिए मैं अब जो है लड़ाई नहीं करूंगा। एवं मुक्ता अर्जुन सांखे रथोपस्थ उपाविशत, वो बैठ गया रथ के अंदर बैठ गया। विसर्ज ससरम चापम शोक संविघ्न मानस, और उसने धनुष और बाण को रख दिया और वो दुखी हो गया, मन से वो बहुत दुखी था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है ये विषाद योग था। क्यों ये विषाद योग बन गया, अर्जुन दुखी था मगर ये योग बन गया। योग मतलब क्या, योग मतलब हायर से जुड़ना, जीव का भगवान से जुड़ना, जीव का परमात्मा से जुड़ना, उसको हम योग कहते हैं। तो विषाद योग कैसे हो गया, इस अध्याय का नाम है विषाद योग। कैसे ये योग बन गया, ये योग इसलिए बन गया कि अर्जुन ने अपना सारा दुख भगवान के सामने कहा, इसलिए ये योग हो गया। हम अपना दुख किसको कहते हैं, हम क्या भगवान के सामने जाके रो के कहते हैं कि भगवान ये मेरा दुख है, भगवान को नहीं कहते हम, या तो अपने मन में रखते हैं या अपने घर वालों को बोलते हैं, इसलिए वो योग नहीं बनता है। अगर आप अपना दुख भगवान के सामने जाके कहो, भगवान अगर सुने तो वो आपका योग बन जाता है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। क्या हुआ उसको हम अब देखते हैं, द्वितीय अध्याय।
ओम श्री परमात्मने नमः।
ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ द्वितीयोऽध्यायः।
अथ द्वितीयोऽध्यायः।
सांख्ययोगः।
सांख्ययोगः।
संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम्
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्
विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः।
तम तथा कृपया विष्टम। संजय अब कह रहा है, रनिंग कमेंट्री संजय दे रहा है। अर्जुन तो बैठ गया रथ के अंदर में, धनुष्बाण वगैरह सब छोड़ के। अब संजय जो है, अब उसको क्या रोग हुआ है उसका निर्णय कर रहा है। देखो, अर्जुन का जो रोग है उसको तीन आदमी निर्णय करेंगे। एक तो संजय निर्णय कर रहा है कि उसको क्या हुआ। अच्छा, संजय कैसे निर्णय कर रहा है? संजय के पास में दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? दिव्य दृष्टि का मतलब है कि वो बैठा हुआ है संजय हस्तिनापुर दिल्ली में, लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में। जब गीता लिखी गई थी तब तो ये आश्चर्य होता होगा लोगों के, मगर आज दूरदर्शन से आपको पता लग जाता है कि अमेरिका में जो घट रहा है वो इंडिया में बैठ के देख रहे हैं। इंडिया में मैच हो रहा है, आप अमेरिका में बैठ के देख रहे हो। दूरदर्शन है कि नहीं, वो देख रहे हो। तो बिना उस टीवी के भी वो देख पा रहा था सब, मगर इस टीवी के अंदर में और उसकी दृष्टि में फर्क क्या था? फर्क क्या है? बोलो, फर्क इतना ही है कि ये दूरदर्शन किसी के मन के भीतर घुस के नहीं बता सकता कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, मगर दिव्य दृष्टि के अंदर में संजय के पास में ये शक्ति थी कि किसी भी व्यक्ति के मन में घुस के उसमें क्या विचार चल रहे हैं वो देख सकता था। इसलिए संजय अर्जुन के मन में घुस के वो देख रहा था कि उसके मन के अंदर में क्या भाव चल रहे हैं। इसलिए वो कहता है कृपया विष्टम। तम कौन है? बोले अर्जुन। वो अर्जुन जो श्रेष्ठ धनुर्धर था, उसका भी क्या हाल है? कृपया आविष्टम, उसके पास में कृपा आविष्टम, कवर्ड बाय दैट पीटी। अच्छा, कवर्ड बाय पीटी का मतलब क्या है? देखो, आपके पास में करुणा का भाव कब आता है? कोई आपके पास में दीन आ जाए, कोई अनाथ आदमी आ जाए, या उसके बाद में कोई शरणागत आ जाए, तब आपके ऊपर दीन भाव आता है। कोई आपसे मांगने आया, भिखारी आ रहा है, तो आपके अंदर कृपा भाव आता है, चलो इसको थोड़ा कुछ दे दो। रणभूमि में तो ऐसा नहीं था। युद्ध भूमि के अंदर तो ऐसा कोई आदमी उसके सामने आके खड़ा नहीं हुआ कि मेरे को भीख दे दो, मेरे को कोई सहायता कर दो, तो कृपयाविष्ट क्यों हुआ? वो बोलते हैं वो कृपयाविष्ट हो गया। और अश्रुपूर्ण, देखो कृपयाविष्ट जो है मेंटल लेवल पर हो रहा है, अश्रुपूर्ण फिजिकल लेवल पर हो रहा है। कुलेक्षणम, कुलेक्षणम उसका जो इच्छन जो उसको देख रहा था, उसको देख के आदमी कह रहा था वो व्याकुल लग रहा है। आप किसी की आदमी की किसी भी व्यक्ति की अगर आंख देखो ना तो आपको पता लग जाता है कि उसका भाव क्या है। तो एक तो उसके अश्रु गिर रहे थे, रो रहा था वो, और व्याकुल इच्छन, व्याकुल जो देख रहा था उसमें बहुत व्याकुलता थी। विषिदंत मेदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, विषिदंत वाचिक लेवल पर भी जो है उसका विषाद था। जितनी भी बातें उसने भगवान को कही वो दुख की बातें बताई ना। तो मेंटल लेवल पर कृपया विष्ट, फिजिकल लेवल पर अश्रुपूर्ण, और वो जो देख रहा था उसमें व्याकुलता थी, और जो कह रहा था वाचिक लेवल पर उसमें भी विषाद था। तो फिजिकली मेंटली एट वाचिक लेवल फुल्ली सेटल्ड। वाक्यम वाच मधुसूदन, उसको जो मधुसूदन ने ये कहा। सारा सुनने के बाद में आप एक चीज ख्याल कीजिएगा कि सारे पहले अध्याय में केवल एक वर्ड छोड़कर भगवान ने कोई बात नहीं कही, एक भी बात नहीं कही। जब वो रथ को ले जाके बीच में खड़ा कर दिया, तब पार्थ को केवल ये कहा, पार्थ देखो तुम तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं, बस इतना ही उन्होंने कहा। उसके अलावा एक सेंटेंस भी भगवान ने पहले अध्याय में नहीं कहा। जब वो सब कुछ बोल लिया, बोलने के बाद में जब बैठ गया, उसके बाद में भगवान बोलना शुरू किया। तो इसमें हमें क्या समझना चाहिए, जब आपके पास में कोई आदमी दुख की बात कहने आ रहा, पहले सारी सुन लो उसकी दुख की बातें, चुप से सुन लो। आप अगर ऑफिसर हो, एम्प्लॉय अगर आता है कंप्लेन करने के लिए, चुप से सब सुन लो। सब सुनने के बाद में जब वो चुप कर जाए, फिर उसके बाद में आप बोलो। तो फिर जो है भगवान कहते हैं,
श्री भगवान उवाच,
श्री भगवान उवाच,
कुतस्त्वाकस्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन।
कुतः स्त्वा कस्मिन् इदं विषमे समुपस्थितम्। श्री भगवान उवाच, भगवान कौन है? तो भगवान कहते हैं, जिनके पास में ये छह शक्तियां हों उसको हम लोग भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब रूलरशिप, गवर्नरशिप, कंट्रोलर जिसके पास में है, ऐश्वर्य। जिसके पास में श्री हो, वेल्थ जिसके पास में हो, विदाउट एनी लिमिट, इन सब के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। श्री, वीर्य, वैलर जिसके पास में हो, यश, फेम जिसके पास में हो, ज्ञान जिसके पास में टोटल नॉलेज हो, और वैराग्य, सब कुछ होते हुए भी वैराग्य। भगवान कहते हैं कि ये सारी दुनिया हमने बनाई है, मगर हमको इस दुनिया से कुछ लेना नहीं है। मैं काम करता हूँ इस दुनिया के अंदर, दुनिया के लिए भी करता हूँ, मगर इस दुनिया से मेरे को कुछ नहीं लेना है। टोटल डिस्पैशन है, भगवान का वैराग्य है। और कई कई जगह ज्ञान के बदले में आपको मोक्ष भी मिलेगा। ज्ञान आपको मोक्ष दिलाता है, इसलिए कई जगह पाठ भेद इसका है, जहां पर ज्ञान के बदले मोक्ष। तो छह चीजें जिनके पास में हो उसको हम लोग भगवान कहते हैं, इसको छह भग कहते हैं। ऐश्वर्य है, श्री है, वीर्य है, यश है, ज्ञान है, वैराग्य। तो भगवान के पास में ये इमेजरेबल अमाउंट में ये सब चीजें उनके पास में है, इसलिए वो भगवान है। कुतस्त्वा कस्मलम इदम्, कहां से ये तुम्हारे पास में कस्मल आ गया? कस्मल मतलब कंफ्यूजन। नाउ यू हैव गॉट कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है वो अभी बताएगा अर्जुन, बताने वाला है कि मेरे को क्या मेरा कंफ्यूजन है। सब सुनने के बाद में भगवान ने कहा, ये तुम्हारे पास में ये कंफ्यूजन कहां आ गया? विषमय, ये तो ठीक समय नहीं है, ये उचित स्थान भी नहीं है, ये तो विषम स्थान है। जैसे देखो, आपको अपनी पत्नी को घर के अंदर किस करना है वो ठीक है, मगर अपनी पत्नी को बस स्टॉप पर किस करना इंडिया के हिसाब से विषम स्थान है, वो सही स्थान नहीं है। बोलते विषम है, अभी तुमको ऐसे क्यों हो गया कंफ्यूजन? रॉन्ग टाइम में, 12 साल तक हम तैयारी करते रहे, अभी तुमको ये कंफ्यूजन कहां से आ गया? समुपस्थितम अनार्जन। देखो, जितने भी आर्गुमेंट अर्जुन ने दिए थे पहले अध्याय में, भगवान ने केवल 3 वर्ड के अंदर सारे के सारे आर्गुमेंट उसको खत्म कर दिए हैं। अनार्जुष्टम, अस्वर्गीयम और अकृतिकरम। 3 वर्ड के अंदर सारे उसके आर्गुमेंट खत्म कर दिए। अनार्जन, अनार्जन क्या है? बोले नोबल, आर्य मतलब होता है नोबल, जो अपने वैल्यूज को पकड़ के रखे। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का हिस्टोरियन का कहना है कि आर्य पहले केवल उत्तर भारत में, भारत के उत्तर में ही आए थे, दक्षिण में नहीं थे। आर्य कहीं भी हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड आर्य हो सकते हैं। आर्य का मतलब जो उत्तम है। अब वो श्रेष्ठ धनुर्धर है, अब बैठा हुआ है कैसे रणभूमि के अंदर में, रो रहा है, उसके मुंह से बात नहीं निकल रही है, मुंह सूखा हुआ है उसका, तो उसको आप आर्य कहोगे? बोला अनार्य। अस्वर्गीय, अस्वर्गीय। बोले अगर तुम यहां पर लड़ोगे तो दो तरफ से तुमको स्वर्ग मिलने वाला है, जीत जाओगे तो राज्य मिल जाएगा और मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। भगवान कहते हैं कि जो भी सैनिक मरते हैं देश की रक्षा के लिए वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। तीसरा अकीर्तिकर, बोले अगर नहीं लड़ोगे तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे गुरुदेव तो बहुत ड्रामेटिकली बोलते थे कि ये उनका जो जैसे आर्मी वालों का वो क्लब होता है ना, बोले आर्मी के क्लब के अंदर सब बैठे हुए हैं, वहाँ सब बात करेंगे, सब महारथी लोगों का अलग एक चक्कर बैठा रहता है, सिपाहियों का अलग बैठा रहता है, मिडिल ऑफिसर अलग बैठते हैं, अलग अलग क्लब होते हैं, तो महारथी के क्लब में लोग कैसे करेंगे, बोले लोग हंसेंगे। बोले श्रेष्ठ धनुधर रो रहा था, भाग गया, तुम्हारी उसमें कीर्ति होगी, कोई कीर्ति नहीं होगी, बल्कि बोलते हैं कि वो मरने से ज्यादा दुखदाई है, आप जीते रहोगे और लोग आपकी बातें करेंगे। आकीर्ति कर अर्जुना। उसके बाद में फिर भगवान देखते हैं कि नहीं ये तो कुछ काम नहीं हुआ, थोड़ी सी फटकार और थोड़ा जबरदस्त देनी होगी। क्या फटकार देते हैं?
क्लैब्यम मास्मगम पार्थ,
क्लैब्यम मास्मगम पार्थ,
नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप
क्लैब्यम।
अच्छा देखो, अगर कोई बहुत आदमी इंटेलिजेंट हो और उसको आप कह दो आप मूर्ख हो, क्या होगा? तिलमिला जाएगा।
श्रेष्ठ धनुर्धर को क्लैब्यम कह दिया, क्लैब्यम मतलब तुम हिंजड़ा हो, नपुंसक हो।
नपुंसक किसको कहते हैं? जो ऊपर से जो दिखता है वो असली है नहीं। अगर वो नपुंसक जो है, हिंजड़ा जो है, अगर आदमी दिखता है तो आदमी नहीं है, अगर वो हिंजड़ा जो है औरत की तरह दिखता है तो औरत भी नहीं है।
तो बोले क्लैब्यम, बोले श्रेष्ठ धनुधर जो हो तुम, वो अब दिखाई नहीं पड़ रहा। अब क्या दिखाई पड़ रहा? रोता हुआ अर्जुन नजर आ रहा है। बोले क्लैब्यम, कई बार कहते हैं ना डांट लगाने से शायद ठीक हो जाए, तो भगवान ने ऐसे ही सोचा थोड़ा सा कड़ी डांट लगाते हैं इसको, तो कड़ी डांट लगा दी इसको। क्लैब्यम मास्मगम है पार्थ, नैतत्त्वयि उपपद्यते, ये तो उचित नहीं है तुम्हारे लिए, ये उचित समय नहीं है ऐसा करने का, आपसे ऐसा नहीं हम लोग आशा करते हैं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक तो उत्तिष्ट परंतु, बोले ये जो है आपका बहुत मन छोटा हो गया, क्षुद्रम, पर इसको छोड़ो, छोड़ के क्या करो, उत्तिष्ट परंतप है, खड़े हो जाओ, तुमको जो है यहां पर युद्ध के लिए आए हो, तुमको खड़े होकर युद्ध करना है, उत्तिष्ट खड़े हो।
तो अर्जुन जो है भगवान की जो उन्होंने काउंटर आर्गुमेंट दिए हैं उसके अगेंस्ट में और बोलने लगा। पहले अध्याय में उसने सारे आर्गुमेंट दिए, कुल धर्म जाति धर्म ये होगा, अधर्म बढ़ जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये होगा, वर्ण संकर होगा। उसके बाद में भगवान ने कहा तीन वर्ड के अंदर में कि वो अनार्जम है, अकीर्तिकर है, अस्वर्गीय है। सब सुनने के बाद में अब फिर अर्जुन बोलने लगा, वो अपने फिर आर्गुमेंट दे रहा है। क्या आर्गुमेंट है?
अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन
कथम, हाउ, कैसे? भीष्म अहम संखे, इस संखे मतलब रणभूमि के अंदर, भीष्म पितामह और द्रोणम, इन दोनों के सामने रथ खड़ा था ना, कहता है कि ये द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को इस रणभूमि में ईसु भी प्रतियोस्वामी, इनके प्रति मैं बाण कैसे मारूं? पूजा हर बरी सूदन है, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, ये गुरु है हमारे, गुरु की तो पूजा करते हैं हम। अब भीष्म पिता हमारे जो है पितामह है, वो भी जो है पूजा योग्य हैं, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, इनको हम कैसे बाण मार सकते हैं? हे अरिसूदन, अरिसूदन का मतलब आपने मधु असुर को जो है मारा था, आप बहुत असुरों को मारते हैं, मेरे भीतर भी एक असुर है। देखो एक एक वर्ड जो चुन चुन के वहां लगाया हुआ है, मेरे भीतर भी एक असुर है। कौन सा असुर है जो अभी मेरे को काम नहीं करने दे रहा है? उस असुर को मारो। हे अरिसूदन, आप जो है कुछ करो।
गुरु न हत्वा हि महानुभावान, गुरु न हत्वा हि महानुभावान, श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके, श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव, भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान।
गुरुन हत्वा हि महान वावन श्रेयो भोक्तुं भैक्षमि, गुरु हत्वा से अपने महान अनुभव वाले, देखो दोनों महान अनुभव वाले हैं, द्रोणाचार्य भी बहुत अनुभव वाले हैं और भीष्म पितामह भी काफी अनुभव वाले हैं। गुरुन हत्वा ही महान भावन श्रेयो भोक्तुं भैक्षमि भी है लोके, इनको मारने के बदले अगर मैं भीख भी मांगू तो वो बेटर है। देखो यहां पर आके अर्जुन अपना स्वधर्म छोड़ के पर धर्म को लेने को तैयार हो जाता है। जब हम भी दुख में आते हैं ना, तब हम भी अपना स्वधर्म छोड़ के शॉर्टकट लगाते हैं कि चलो पर धर्म ले लो, जो हमें करना चाहिए उसको हम छोड़ देते हैं। यहां पर भी अर्जुन क्या कर रहा है कि मैं अब जो है क्षत्रिय धर्म, जो क्षत्रिय धर्म हमारा है कि हमको युद्ध करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह रहा है कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं। भीख कौन मांग सकता है? तो हमारे यहां कहते हैं कि भीख जो है तीन आदमी लोग मांग सकते हैं। एक तो ब्रह्मचारी मांग सकता है, दूसरा ब्राह्मण मांग सकता है, तीसरा दीन आदमी मांग सकता है। भिखारी जो है वो भीख मांग सकता है। अच्छा ब्राह्मण कौन है? तो एक तो हम लोग जानते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है उसको हम ब्राह्मण मान लेते हैं। दूसरा जो है जो सात्विक कर्म करता है उसको भी ब्राह्मण बोलते हैं। तीसरा जो साधन चतुष्टय संपन्न है उसको भी हम ब्राह्मण बोलते हैं। और चौथा जो ब्रह्म में चरण करता है उसको भी ब्राह्मण बोलते हैं। जैसे हम लोग 2 साल का जब कोर्स करते थे ब्रह्मचारी कोर्स, हम लोग सब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की कैटेगरी में आते थे। और वहां पर बीच बीच में शादियां हुआ करती थी पवई के अंदर में, और हम लोग जो है आशा लगा के बैठे रहते थे, अरे आज पंडाल लग रहा है, आज कोई शादी होगी, अच्छा खाना मिलेगा, आइसक्रीम वगैरह आएगी आज। तो वहां पर एक जो है नियम वो लोगों ने ये बनाया कि हमारे यहाँ पर करीबन 100 ब्रह्मचारी हैं, आपकी बारात खाने के पहले 100 ब्राह्मण पहले खाएंगे। वी वेयर कंसीडर्ड एज ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि हम दिन रात केवल ब्रह्म की चर्चा करते थे, हमारी पढ़ाई के अंदर सारा दिन जो है केवल ब्राह्मण की चर्चा होती थी, तो इसलिए हम लोग सब ब्राह्मण। तो बारात बाद में खाएगी, पहले ब्राह्मण खाएंगे उसके बाद में बारात खाएंगे। तो ब्राह्मण को, अच्छा ये क्या ब्राह्मण है अर्जुन? इन चारों कंडीशन के अंदर क्या वो फुलफिल करता है कोई भी? वो ब्राह्मण कुल में पैदा भी नहीं हुआ, वो क्षत्रिय है, वो साधन चतुष्टय संपन्न भी नहीं है,
सात्विक कर्म करने वाला भी नहीं है। तो ब्राह्मण नहीं हुआ, मगर वो देखो अपना परधर्म स्वधर्म छोड़ के परधर्म लेने को तैयार हो गया। हत्वार्थ कामांश गुरन नहीं वे भूंजी है भोगान रुद्र प्रतिज्ञा। बोला अगर मैं मारूंगा भी और उसके बाद में राज्य अगर जीत भी गया तो फिर वो राज्य कैसा है? बोलो वो खून के अंदर सना हुआ वो राज्य होगा, कैसे उसको हम भोग करेंगे? हमको बराबर, हम जब भोग करने जाएंगे, जब भी हम सुख का लाभ करेंगे तो हम बराबर ये सोचेंगे कितने आदमी को मारने के बाद में फिर हम ये भोग कर रहे हैं। तो भोग को आप सचमुच क्या भोग कर पाओगे? नहीं, बराबर आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो इतने लोगों को मारने के बाद में हमको ये मिला है और ये इतने लोगों का खून इसके अंदर गया है, ये सारा जो है गड़बड़ सड़बड़ लगता है। अच्छा फिर
न चैतद्विद्मकथरन्नोगरीयः यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः।
अब देखो उसका फिजिकली सेटर्ड हम लोगों ने देख लिया, उसका मेंटली सेटर्ड भी हम लोगों ने देख लिया, वाचिक हिसाब से भी वो टूट चुका था, अब जो है इंटेलेक्चुअली भी टूट चुका है। इस श्लोक में आपको मिलेगा, ये आपको खोज खोज के निकालना पड़ेगा कि कहां पर कैसे कैसे वो टूट गया। फिजिकली सेटर्ड, मेंटली सेटर्ड, वाचिक सेटर्ड, नाउ इंटेलेक्चुअली सेटर्ड। कैसे? न चाहिए तद विद्वम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कुतरन्नो गरियो यदवा जयम यदि वा न जयो, कि मैं जीतूं या वो जीतूं, इसका कंफ्यूजन मेरे को है, क्या होगा, कौन सा अच्छा है, मैं जीतूं वो अच्छा है कि वो जीत जाए वो अच्छा है, ये भी कंफ्यूजन मेरे को हो रहा है। याने बहत्वा जिजी विषाम इच्छते, मैं जो है जीना नहीं चाहता हूं, क्यों? याने बहत्वा इन लोगों को मार के, कौन है ये अभिष्टता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, प्रमुख कौन है? बोले मेरे अपने भाई है धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्रहा, ये ले तो हैं 100 भाई, वो लोग हमारे खड़े हुए उधर में, प्लस उनके संबंधी वगैरह हैं, प्लस और जो है उनके जान पहचान वाले हैं, वही तो हैं। तो मेरे को अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इनको मारूं तब ठीक रहेगा या ना मारूं, मार के मैं जीतूं तब ठीक है या वो मेरे को मार के वो जीत जाए वो ठीक है। देखो इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन भी उसको आ गया। उसके बाद में वो अपनी बीमारी अपने आप निर्णय कर रहा है अगले श्लोक में।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्।
कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव है, अब वो अपनी डिजीज अपने आप जो है वो बता रहा है कि मेरे को क्या हुआ है। बोले कार्पण्य दोष मेरे को लग गया है, मैं कृपण हो गया हूं। कृपण किसको कहते हैं? माइजर किसको कहते हैं? जिसके पास में धन है मगर ना वो अपने ऊपर खर्च करता है ना दूसरों पर खर्च करता है, उसी को तो कृपण कहते हैं ना। पैसे हैं, अपने पर भी नहीं खर्च करेंगे, आपको भी नहीं देंगे, वो है कृपण। तो ये कृपण कैसे हो गया? अर्जुन कैसे कृपण हो गया? अर्जुन कृपण इस वास्ते हो गया कि मेरे पास में बुद्धि है, मगर इस समय मैं कृपण हूं, मेरे लिए क्या ठीक है वो भी नहीं जानता, दूसरों के लिए क्या ठीक है उसका भी विचार मैं नहीं कर सकता। तो इस पर इसलिए कृपण दोष मेरे को लग गया है, कार्पण्य दोष हो। संजय ने क्या निर्णय किया था, कृपयाविष्टम, याद रखिएगा। और उसके बाद में भगवान ने कहा क्या, कस्मलम इदम, ये कैसे तुमको अभी कंफ्यूजन आ गया। भगवान ने कहा इट इज योर कंफ्यूजन ऑफ माइंड। संजय ने कहा कि आपको जो है कृपया का इमोशंस आविष्ट कर गया है। और वो खुद क्या कहता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव है, मेरा स्वभाव कैसा है, कार्पण्य दोष लग गया मेरे को, मैं अपनी बुद्धि को अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं। कार्पण्य दोषो अपहत, पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ चेता, इसलिए पृच्छामि आपको पूछ रहा हूं, किसके बारे में, धर्म सम्मूढ चेता, क्या धर्म है इसके लिए मेरी अब बुद्धि काम नहीं कर रही है, धर्म सम्मूढ चेता, मेरा मन जो है अभी ठीक बता नहीं रहा है कि क्या मेरा धर्म है क्या नहीं है। यस श्रेयम, जो मेरे लिए श्रेय हो, श्रेय और प्रेय दो चीजें हैं, क्या फर्क है प्रेय में और श्रेय में, तो प्रेय ऐसा ही चीज होती है जो आपको पहले सुख देता बाद में दुख देता है, और श्रेय क्या है, श्रेय वो है कि जो पहले दुख देता बाद में सुख देता है। जैसे एक स्टूडेंट को अगर पूछो बोले टीवी देखना है, बोला वो प्रेय है, बाद में क्या होगा, आप पढ़ नहीं रहे हो तो बाद में दुख आने वाला है, अभी टीवी सीरियल देख लो सुख मिलेगा तुरंत, मगर पढ़ाई गई, बाद में क्या होगा, दुख आएगा, वो प्रेय होगा। श्रेय क्या है, श्रेय कि आपको अगर रोज सवेरे बोले 4 बजे उठिए, उठ के नहाइए, नहा के प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर जप कीजिए इतनी माला, तो रोज आपको तकलीफ होगी सवेरे उठ के, मगर उसका फल क्या है, बाद में जाके फल बहुत अच्छा है। तो अर्जुन क्या पूछ रहा है, बोलो मेरे को प्रेम मत बताओ, यह श्रेय जो मेरे लिए श्रेय है, अगर वो दुखदाई है अभी तो वो मैं करने को तैयार हूं, मगर अल्टीमेटली मेरे को उसके अंदर मेरा अच्छा होना चाहिए, यह श्रेय, बोले ये बताओ। यह श्रेय साथ निश्चितम ब्रूही तन में, निश्चित करके बताओ, शिष्य थे हम, क्यों बताओ मेरे को। अब देखो अर्जुन अब ये नहीं कह रहा कि मैं आपका सखा हूं, ऐसा कहते हैं कि जब वो लोग युद्ध भूमि में गए थे तब उन दोनों की उम्र करीबन 70, 72, 75 के आसपास थी, भगवान की भी और अर्जुन की भी, मगर ये उम्र जो है वो द्वापर युग की है, आप कलयुग के साथ मिलाना मत उसको, सतयुग में लोग 10,000 साल तक मेडिटेशन करते थे, कलयुग के अंदर केवल 100 साल तक भी जीवित रहते हैं कि नहीं पता नहीं, तो द्वापर में आयु लंबी थी, तो उस टाइम में जब 70, 72 साल तक वो लोग एक साथ रहे हैं, कभी भी भगवान ने अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया, कभी नहीं दिया, एक साथ रहे हैं वो लोग, एक साथ खाए हैं, एक साथ सोए हैं, सब कुछ किया उन्होंने, मगर कभी भी ज्ञान नहीं दिया उनको। नहीं अर्जुन ने पूछा है और नहीं कृष्ण ने बताया, अर्जुन को यह पता था ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ये उसको मालूम था ये भगवान है, ये इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, हम उसको सखा कहते हैं जो भी कहते हैं, मगर ये इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ये उसको पता था। शिष्य थे हम, तो मैं आपका शिष्य हूं, पहली बार अर्जुन कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। देखो कई बार जो है ना ऐसा होता है कि आप बैठे हुए, मालिक बैठा हुआ है पीछे गाड़ी के अंदर में, और कभी कभी सोचते सोचते कभी उसको समझ में नहीं आता है तो अपने ही ड्राइवर से पूछता है मेरे को क्या करना चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है। उसी तरह अर्जुन भी अपने सारथी से पूछ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, शिष्यतम साध इमाम, मेरे को बताओ, माम ताम प्रपन्नम, आई सरेंडर, प्रपन्न होना पड़ेगा, केवल आपको प्रश्न पूछने से नहीं होगा, साथ में आपको सरेंडर करना होगा. व्हाट इज सरेंडर? हमारे पुरुषोत्तम स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी बोलते थे सर अंडर, सर को नीचे करना है. लोगों का सर ही नहीं नीचा होता है. मंदिर में जाते हैं सर नहीं नीचा करते हैं, गुरु के पास आते हैं सर नीचा नहीं करते. तो बोले सरेंडर करना होगा. प्रपन्न अर्जुन ने सरेंडर किया, उनको गुरु माना. इसके बाद में भगवान जो है उसको कहेंगे. फिर और कुछ कह रहा, सुनिए क्या कहता वो.
नहीं प्रपश्यामि ममा पुनद्यात्, नहीं प्रपश्यामि ममा पनुद्यात्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां, अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्,
अवाप्य भूमा वसपत्न रिद्धम राज्यम सुरान अपि चाधिपत्यम. अवाप्य, अगर मेरे को सारा सब कुछ मिल जाए, अवाप्य भूमा सब भूमि, विदाउट एनी ट्रबल, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फ्री होल्ड लैंड सब कुछ अगर मिल जाए, राज्यम सुरान अपि, सुर मतलब देवताओं का राज्य भी अगर मेरे को मिल जाए, देवताओं का राज्य मतलब अगर स्वर्ग भी मेरे को मिल जाए, उसका भी अगर मैं राजा बन जाऊं, फिर भी नहीं प्रपश्यामी माम उनपद्यात, मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को मेरा जो दुख जो है वो उसे हट जाएगा. यद शोकम उच्छोषण इंद्रियाणाम, ये जो शोक मेरा जो है अभी, जो मेरे को दुख है, जो मेरी की इंद्रियों को सुखा रहा है, वो जो शोक है वो सारा राज्य भी अगर मिल जाए, स्वर्ग भी अगर मिल जाए, निष्कंटक राज्य भी मिल जाए मेरे को, तब भी मैं सोचता हूं कि इससे मेरा जो है शोक नहीं दूर होने वाला है. देखो बहुत समझदार आदमी ये बात कह सकता है. हम लोग को शोक होता है ना, तो हम लोग जो है सोचते हैं कि बाहर की सिचुएशन बदल कर लेंगे तो शोक ठीक हो जाएगा, मगर होता नहीं है. बाहर की सिचुएशन बदल के आपको टेम्पोररी आपको रिलीफ मिल जाएगी, नहीं तो काम होता नहीं है वो, और होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा वो. तो ये अर्जुन को पता है कि ये बाहर का अगर हमको राज्य भी अगर दे दोगे तो हमारे भीतर का जो दुख है वो दुख क्या है. अर्जुन क्यों दुखी हुआ था? अर्जुन दुख किस लिए हुआ? व्हाट वाज द पॉइंट? कहां पर वो आके दुखी हुआ था? जैसे ही भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने रथ रखा उस टाइम वो दुखी हुआ, उसके पहले तक वो दुखी नहीं था. वो रथ के अंदर खड़ा था, गांडीव उठाए हुए था, वो देख रहा था चारों तरफ कौन कौन है. जैसे ही उसने देखा ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, ये उसको दुख हो गया. और वो दुख वो कहता है कि राज्य मिलने से ये दुख जाने वाला नहीं है.
संजय उवाच, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परन्तप, गुड़ाकेशः परन्तप नयोत्स इति गोविन्दम्, नयोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, उक्त्वा तूष्णीं बभूवः.
संजय उवाच, अब संजय फिर जो है बता रहा है. क्या बता रहा है? क्योंकि वो अब जो है चुप कर गया. कौन चुप कर गया? अर्जुन चुप कर गया. एवं उक्ता ऋषिकेशम, भगवान को ऐसा कहने के बाद में गुड़ाकेश, गुड़ाकेश जिसने अपनी निद्रा के ऊपर विजय कर लिया है, उस गुड़ाकेश अर्जुन ने परंतप, जो धृष्टराष्ट्र के लिए वो परंतप मतलब नष्ट करने वाला है, जो दुश्मनों को खत्म करने वाला है, न योस्य इति गोविंदम, उसने कहा गोविंदम मैं अब डरने वाला नहीं हूं, मैं और युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से मैं नहीं करूंगा। उक्ता तूष्णी बबु है, और ऐसा बोल के वो चुप कर गया। बस अर्जुन इतना बोलने के बाद में अब चुप कर गया, बैठ गया। ये अब संजय रिपोर्ट दे रहा है। उसके बाद में फिर संजय कहता है उसको, फिर भगवान क्या कहने वाले हैं वो बता रहा है। फिर अभी संजय कह रहा है,
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः।
तम उवाच ऋषिकेश, फिर भगवान उसको कहने जा रहे हैं प्रसन्नीव भारत। अच्छा भगवान कहा है, बोले प्रसन्न है। देखो प्रसन्न कब होते हैं भगवान, तो यहाँ पर महात्मा लोग कहते हैं, हम लोग के गुरुदेव भी कहते थे कि जब आपके घर में मान लीजिए कोई आदमी बीमार है और आपको डॉक्टर ने आपने बुलाया, डॉक्टर आपके घर में आता है, बोले जब आता है तब उस डॉक्टर का चेहरा देखिए, तब उसका डॉक्टर कैसा का चेहरा होता है, वो गंभीर होता है, थोड़ा चिंतित होता है, भीतर ही भीतर सोचता है पता नहीं मैं डायग्नोज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद में जब वो मरीज को देखता है, देखने के बाद में उसको पता चल जाता है कि क्या है, और उसके बाद में वो अपना वाश बेसिन में हाथ धो के आता है, तब उसका चेहरा देखिए, तब वो मुस्कुराता है प्रसन्न, क्यों डायग्नोज कर लिया, इसलिए वो प्रसन्न हो जाता है। तो यहां पर भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए, तो बोलते हैं महात्मा लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, बोलते हैं इसके बारे में कैसे प्रसन्न हो गए। तो बोलते हैं प्रसन्न इस वास्ते हो गए कि पहली बार ब्रह्म विद्या युद्ध भूमि में देने जा रहे हैं। ब्रह्म विद्या कहाँ दी जाती है, गंगा तट पर दी जाती है, हिमालय में दी जाती है, अभी वो ब्रह्म विद्या कहाँ देने वाले हैं, युद्ध भूमि। हैप्पी, बोले ऐसा भी करके दिखा देंगे। अच्छा फिर वो कहते हैं कि पात्र कैसा है, अर्जुन कैसा है, बोले निषिद्ध करने को तैयार है। क्या निषिद्ध कर्म, क्षत्रिय है, भीख मांगने को तैयार है, निषिद्ध कर्म है उसके लिए। बोले पात्र भी कुपात्र है, उसको ब्रह्म विद्या देने को तैयार है, इसलिए प्रसन्न है। अच्छा तीसरा, बोले ब्रह्म विद्या कैसे दी जाती है, ब्रह्म विद्या दी जाती है गुरु ऊपर बैठता है और शिष्य नीचे बैठते हैं। यहां पर क्या हाल है, सारथी नीचे बैठा हुआ है, अर्जुन ऊपर बैठा हुआ है, फिर भी भगवान प्रसन्न है। तो देखो देश भी ठीक नहीं है, देश अच्छा नहीं है, मतलब शांत जगह नहीं है, युद्ध भूमि है। काल कैसा है, काल भी अच्छा नहीं है, वो के समय जहां पर इतनी आवाज हो रही हो उसमें क्या ब्रह्म विद्या दी जा सकती है। ब्रह्म विद्या अर्ली मॉर्निंग हम लोग देते हैं, सवेरे उपनिषद क्लास करते हैं, तो इतने कोलाहल के अंदर में क्या ब्रह्म विद्या दी जा सकती है, दे रहे हैं। पात्र अधिकारी, बोलो वो भी ठीक नहीं है, साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, विवेक वैराग्य उसमें नहीं, निषिद्ध कर्म करने को तैयार है, ऐसा पात्र है। अच्छा फिर भगवान सोचते हैं, लोग तो सोचेंगे बहुत डिफिकल्ट है, मगर मैं तो अंतर्यामी हूं, बट आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, युद्ध भूमि के अंदर मैं ब्रह्म ज्ञान दूंगा। वेरी गुड। और संजय कहता है, धृतराष्ट्र भगवान इसलिए खुश हैं कि तुम्हारे कुल में आज तक किसी को ब्रह्म विद्या मिली नहीं है, आया पहली दफा अर्जुन को ब्रह्म विद्या मिलने वाली है, इसलिए भगवान खुश है। देखो ये सब महात्मा लोग खोज खोज के निकालते हैं, भगवान क्यों खुश है, प्रसन्न है वह भारत है। सेन योर मध्य विशिदंतम इदम बचाया, सेन योर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में इतनी कोलाहल के बीच में भगवान उसको ब्रह्म ज्ञान देने को तैयार हैं। देखो भगवान जो है उसने केवल ये पूछा है कि मेरा धर्म सम्मेढ़ चूता चित है, कि मैं जो अभी मेरा धर्म क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है वो मेरे को मालूम नहीं है। उसका अर्जुन का प्रश्न भगवान के प्रति इतना ही है, मेरा अभी इस क्या कर्तव्य वो बताओ। मगर भगवान उसको सीधा आत्मज्ञान देने वाले हैं, सीधा आत्मज्ञान, क्योंकि ये संसारिक दुख कभी भी किसी भी साधन से नहीं जाएगा। आप ये जान के रखो अच्छी तरह से, आप हजार चेष्टा कर लो कभी नहीं ये शोक आपका जाएगा। आप सिचुएशन बदल लो, व्यक्ति बदल लो, जॉब बदल लो, जो मर्जी कर लो, ये दुख आपका कभी नहीं जाएगा। कब जाएगा ये दुख आपका? जब आपको आत्मज्ञान होगा तभी दुख जाएगा। इसलिए भगवान जो है सबसे पहले उसको आत्मज्ञान देंगे। हम आत्मज्ञान के अंदर वो उसको चार लेवल पर बता देंगे कि देखो तुम्हारी जो शोक का जो कारण है वो ठीक नहीं है। डिफरेंट लेवल से उसको एक एक करके वो बताएंगे, वो हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा ये शोक जो है, तुम जो शोक कर रहे हो वो ये शोक करना ठीक नहीं है। मगर वो ज्ञान जो है अर्जुन के माथे के ऊपर से निकल जाता है। अगर अर्जुन समझ जाता है तो उसके बाद फिर गीता और नहीं मिलती हमें, मगर अर्जुन समझा नहीं, भगवान उसके बाद में और सब बताएंगे, वो हम लोग अब अगले सीरीज में देखेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।